नमस्कार, मैं रविश कुमार। प्राइम टाइम के अनगिनत एपिसोड में आप दर्शकों के बीच मीडिया के पर्दे के पीछे के खेल को उजागर करता रहा हूं। एक दर्शक के लिए पर्दा हटाकर देखना जरूरी होता है कि खबरें कैसे बनती हैं और किसी मुद्दे को कैसे खबरों की शक्ल दी जाती है, ताकि आपको लगे कि खबर है तो उसका कवरेज हो रहा है। लेकिन यह खेल इतना गहरा है कि कब खेल और पर्दा बदल जाता है समझना मुश्किल है। इसलिए खबर को देखते और पढ़ते समय हर दिन नए सिरे से अभ्यास करना पड़ता है। बहुत से दर्शकों को पता ही नहीं चलेगा कि कुछ मामलों को बेवजह कवर किया जा रहा है। भारत में दो तरह का गोदी मीडिया है, एक गोदी मीडिया है और दूसरा अर्ध गोदी मीडिया है। दोनों ही किसी घटना को इस तरह से कवर करते हैं जैसे खबर है। यह बात पूरी तरह से गलत भी नहीं होती, क्योंकि व्यवस्था और विचारधारा दोनों इस तरह से इंतजाम कर देते हैं कि खबर के खबर होने में कोई संदेह नहीं रह जाता। हर तरह से लगेगा कि यही पत्रकारिता है और यही खबर है। खबरों को सेटअप करने में, सजाने में और वहां से लेकर उन्हें वैधता प्रदान करने का काम कैसे किया जाता है, लेजिटिमाइज कैसे किया जाता है, इसे समझने का आज प्रयास करते हैं। आप देखेंगे कि अदालत, अपील, वकील, दलील, तारीख और जांच, इन सब के जरिए मुद्दे खड़े होते चले जाते हैं। लगातार इंटरव्यू चलता रहे, डिबेट में कोई आता रहे, इसके लिए लोग बुला लिए जाते हैं। कोई याचिकाकर्ता बन जाता है, कोई इतिहासकार बन जाता है, कोई प्रवक्ता बन जाता है। मामले में दो पक्ष बना दिए जाते हैं और मीडिया की हेडलाइन में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है। दर्शकों को लगेगा कि मीडिया संदेह और सवाल को लेकर बहस कर रहा है, लेकिन संदेह की आड़ में, बहस में दावेदारी इस तरह से होती जाएगी कि वक्ता का सच ही सच बनता चला जाएगा। वक्ता के सच को सच बनाने के लिए एंकर भी दहाड़ते हुए एक पार्टी बन जाता है। आस्था के नाम पर व्यापक समाज जमा हो जाता है, जुट जाता है, जिसके सामने गलत को गलत कहना मुश्किल हो जाता है। बहस करने वाला मीडिया अपनी तरह से दावों की पड़ताल कभी नहीं करेगा, बल्कि दावों को ही इतिहास बताता रहेगा। फिर अदालत में सुनवाई के दिन इसके कवरेज के लिए चैनलों की तरफ से अनेक रिपोर्टर उतार दिए जाते हैं। इंटरव्यू में किए जाने वाले हर तरह के दावों को फ्लैश किया जाने लगता है। इस तरह दोनों पक्षों को दिखाने के नाम पर कई सारी गलत बातें सही की जगह लेने लगती हैं। आपको लगेगा कि मीडिया मुद्दे को कवर कर रहा है। कोशिश करेंगे तो आप देख पाएंगे कि कैसे पत्रकारिता के नाम पर फेक पत्रकारिता खड़ी कर दी गई है, जो फेक न्यूज से आगे की चीज है। पत्रकारिता का संबंध मुद्दों के अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन से है, जो ऐसे मामले में कभी नहीं किया जाता है, बल्कि इसकी जगह कवरेज के नाम पर पत्रकार होने का अभिनय किया जाता है। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। कई बार टीवी की रिपोर्टिंग में किसी गरीब की कहानी उसके आंसुओं के साथ भावुक बना देती है, लेकिन उसमें गरीबी के मूल कारणों का जिक्र कभी नहीं होता। जिसकी जवाबदेही होनी चाहिए वह सरकार उस रिपोर्ट में कभी नहीं होती, उसकी नीतियां नहीं होती। इस तरह से जहां आपकी नजर होनी चाहिए वहां से हटाकर रोते हुए गरीब पर टिका दी जाती है, ताकि उसकी गरीबी नीतियों का नतीजा ना लगे, उसकी अपनी नाकामी लगे। ऐसी रिपोर्ट में सरकार की तरफ से कोई वक्ता नजर नहीं आता है। कुल मिलाकर यही कहना चाहता हूं कि खबरों के नाम पर आभासी खबरें होती हैं, वर्चुअल न्यूज। खबर नहीं होती, आपकी आंखों के सामने खबरों की समानांतर दुनिया बना दी जाती है, जो खबर नहीं है, खबर की छवि है, जिसे अंग्रेजी में मिरर इमेज कहते हैं। आप पैरेलल यूनिवर्स भी कह सकते हैं, समानांतर दुनिया हिंदी में। मेरी यह अकेले की पीड़ा नहीं है, बल्कि गोदी मीडिया और अर्ध गोदी मीडिया के भंवर में फंसे मेरे जैसे 10-5 और लोग भी हैं, जो हर दिन इस पेशे को गर्त में जाता देख हताश होते रहते हैं। हर तरफ कोर्ट में किसी मस्जिद की दीवार या उसके नीचे मंदिर के दावों की याचिका, बहस और उसका कवरेज है। कोर्ट का कमेंट है, अगली तारीख है, वकील का बयान है, और यही सब हेडलाइन है। उसी कोर्ट में इंसाफ के दफन हो जाने और हासिल करने के संघर्ष के न जाने कितनी खबरें हैं, उनके कवरेज के लिए पूरे मीडिया में 2 रिपोर्टर भी नहीं है।
अगर आपको कोई बिच्छू दिखाई देगा, सांप दिखाई देगा, जैसे भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा।
एक तरफ कोर्ट में याचिकाओं के स्वीकार किए जाने के बहाने कवरेज की आंधी चल रही है, तो दूसरी तरफ इसी तरह के मामले में सरकार कोर्ट के आदेशों को समय पर पूरा नहीं कर पाती है। आज हेट स्पीच मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछली सुनवाई में केंद्र से कहा गया था कि वह एक चार्ट बनाए, बताए कि कहां कहां इस तरह के मामले दायर हुए हैं, किन किन मामलों में कार्रवाई हुई है। केंद्र कोर्ट में चार्ट दाखिल नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि हम चार्ट चाहते थे ताकि बार बार यह भ्रम ना पैदा हो। कार्यालय रिपोर्ट कहती है कि चार्ट दायर नहीं किया गया है। इन मामलों में सुनवाई के दौरान अदालत की टिप्पणियों से कई बार उजागर हो चुका है कि सरकार कार्रवाई को लेकर कितनी तत्पर है। वो तत्पर है ही नहीं। इस तरह की ढिलाई को लेकर कोई कवरेज नहीं है, और है भी तो केवल नाम भर के लिए। उसमें भी अदालत की टिप्पणी से आगे जाकर सरकार की जवाबदेही को लेकर सवाल कम है।
ये भी शर्म की बात है कि हिंदुस्तान में भगवा कलर में हिंदी में संविधान विशेष रूप से बनवाना पड़ रहा है, कायदे से ये हमेशा होना चाहिए।
इस तरह से आज दिन भर दिल्ली, मथुरा से लेकर वाराणसी तक की अदालतों की कार्यवाहियों को लेकर इतनी खबरें आती रहीं कि इनके अलावा दूसरी खबरें हैं भी या नहीं है पता लगाना मुश्किल हो रहा था। आप इनसे हटकर अलग करना भी चाहें तो कुआं खोदने जैसा श्रम करना होगा। अलग से करने और दिखाने के लिए बहुत कुछ होता भी नहीं है। उम्मीद है आप समझने का प्रयास करेंगे। मैल्कम एक्स का एक बयान है कि पूरी धरती पर मीडिया से शक्तिशाली कोई तंत्र नहीं है। मीडिया अपनी इस अकूत शक्ति से किसी बेकसूर को दोषी साबित कर दे और दोषी को बेकसूर बना दे। उसकी इस शक्ति का कारण यह है कि मीडिया जनता के दिलो दिमाग को कंट्रोल करता है। मैल्कम एक्स अफ्रीकी अमेरिकी मूल के मुसलमान थे और मानवाधिकार कार्यकर्ता। आज मैल्कम एक्स का जन्मदिन है। उनका जन्म 1925 में हुआ था। भारत में ऐसी खबरों और याचिकाओं की भरमार हो गई है कि यहां मंदिर है, यहां मूर्ति है। इनके किरदारों के बयानों से चैनलों और अखबारों के पन्नों को भर दिया गया है। व्यवस्था के हिसाब से गोदी मीडिया और अर्ध गोदी मीडिया के जरिए राजनीतिक आंदोलन चलाया जा रहा है। राजनीतिक दल के कार्यकर्ता घर बैठे केवल व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर रहे हैं, बाकी का सारा काम आधिकारिक मीडिया के संवाददाता कर रहे हैं। एक तरह से ऐसे मुद्दों के बहाने संवाददाता और एंकर चाहते हुए और ना चाहते हुए भी प्रॉक्सी कार्यकर्ता बन गए हैं। प्रॉक्सी का मतलब जैसे हीरो फाइट नहीं करता, उसकी जगह कोई और फाइटर आ जाता है। जैसे दारोगा के इम्तिहान में परीक्षार्थी की जगह कोई और परीक्षा देने आ जाता है। महंगाई से पीड़ित समाज महंगाई से पीड़ित है या मस्जिद में मंदिर मिलने के किस्सों में डूबा जश्न मना रहा है।
ये क्या दिक्कत क्यों हो रही है आपको? क्या पहले दिक्कत नहीं थी?
पहले सर ये इसका सीएनजी का रेट कम था और अब ज्यादा हो गया। पहले बच जाता था, बस नहीं पाता है, खर्चे ज्यादा हो गए। एक मतलब ये एसी चलाना पड़ता है, बगैर एसी के कस्टमर मानता नहीं है और हमें भी अच्छा नहीं लगता बगैर एसी के चलाएं।
अच्छा,
और गर्मी का दिन है। हाँ जी, गर्मी का दिन है तो इसलिए कुछ भी नहीं बच पाता सर, बहुत दिक्कत ज्यादा हो।
तो आप एक चीज बताइए, पहले आप कितना कमा लेते थे, अब आप कितना कमा रहे हैं?
पहले सर मतलब अपना ईएमआई भी निकल जाता था, थोड़ा बहुत घर का खर्चा भी चल जाता है। हाँ। लेकिन अब तो मतलब ईएमआई में भी दिक्कत हो रही है।
घर का खर्चा कैसे चला रहे हैं आप?
घर का खर्च सर ऐसे वो तेरे मेरे सैलरी का काम तो चलाना पड़ता सर।
तो कर्जा लेके चला रहे हैं?
हाँ जी हाँ जी, जैसे ईएमआई रोक दी तो घर का चला रहे हैं।
अच्छा, मतलब घर का चला रहे, ईएमआई आपने रोक दी है?
हाँ सर, क्या करें, निकल नहीं पाती तो रोकनी पड़ती है।
तो क्या फिर ईएमआई रुकने के बाद उसका कोई लेट फी ये सब देना पड़ता है आपको?
सर बिल्कुल चार्ज लगता है, अगर टाइम पे नहीं भरेंगे तो बैंक थोड़ी छोड़ेंगे, मैं वो तो लास्ट में लेंगे।
अच्छा, तो महंगाई का भी असर आपके ऊपर है, ये तो एक सीएनजी की बात हम कर रहे हैं।
जो 2 रुपए की चीज थी आज वो 5 रुपए की हो रही है, इतना हो गया। किराया हमारा बढ़े नहीं,
किराया नहीं बढ़े
नहीं।
सब्जी के दाम तो बढ़े हुए हैं, तो क्या आप सब्जी आप लोग खाते हैं या नहीं? फिर
सर खाना तो पड़ता है, बगैर खाए तो कितने दिन चलेंगे? किसी भी सब्जी को ले लो 30-40-50 रुपए पाव आधा किलो ऐसे मिलता है।
अच्छा, आधा किलो 40 रुपया।
हाँ जी।
कितने बच्चे हैं आपकी?
सर मेरे 2 बच्चे हैं।
तो दोनों पढ़ाई कर रहे हैं क्या?
हाँ सर पढ़ाई कर रहे हैं सर। शिक्षा पर तो बहुत असर पड़ रहा है सर, अभी जैसे बच्चे का पहले प्राइवेट में था, अभी इसमें करवा रखे सरकारी में, और ये क्या नाम है गुड़िया का मेरा ये आर्य गुरुकुल कन्या में है एडमिशन।
मतलब बेटा का पहले प्राइवेट में था?
हाँ जी।
तो आपने सरकारी में क्यों किया?
सर इसकी फीस ही नहीं दे पाते, क्या करें, इतना महंगा हो रहा है सब कुछ।
अच्छा।
कुछ बचता है नहीं।
राजकुमार जैसे करोड़ों लोग होंगे जो महंगाई की मार से पीड़ित होंगे, लेकिन इसके बाद भी अखबारों में महंगाई की एक खबर छपती है। उस दिन छपती है जिस दिन कोई सरकारी डेटा आता है, उस खबर के आगे पीछे महंगाई के असर से जुड़ी बाकी खबरें नहीं छपती हैं। ऐसा ही ज्यादातर चैनलों में होता है। लेकिन मंदिर को लेकर आप अखबारों और चैनलों को देखिए, इसी एक मुद्दे से सारी जगहें भर दी गई हैं। आज रसोई गैस थोड़ी और महंगी हो गई। इन दिनों आपकी क्रय शक्ति की अग्नि परीक्षा चल रही है और आप हर बार महंगाई का सामना बहादुरी से कर रहे हैं, वेल डन। इसलिए इस खबर को यहीं छोड़ देते हैं और छत्तीसगढ़ से आई इस रिपोर्ट को देखते हैं। अनुराग द्वारी बता रहे हैं कि कोरोना काल के बाद रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों का नया टाइम टेबल जारी किया, जिसमें छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों के स्टॉपेज खत्म कर दिए गए, जिसका दुष्प्रभाव लोगों के जीवन पर दिखाई देने लगा है। कहीं छात्रों की पढ़ाई छूट गई है तो लोगों का जीवन यापन का साधन खत्म हो गया है।
अमित यादव बिलासपुर में बीए सेकेंड ईयर के छात्र थे। अपने घर बिलगहना रोड से रोज बिलासपुर में अपने कॉलेज जाते थे। 300 रुपए में महीने का पास बन जाता था। अब कॉलेज जाने के लिए बस से हर दिन खर्चा आता है 200 रुपए। अमित ने पढ़ाई छोड़ दी है, मजदूरी कर रहे हैं।
अभी तो कुछ नहीं काम, हम बस
मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा, इसके पहले क्या कर रहे थे?
पढ़ाई करते थे।
किस क्लास में?
सेकेंड ईयर।
तो पढ़ाई क्यों छोड़ दी?
ट्रेन ना चलने के कारण।
बिलगहना में अमित जैसे कई छात्र हैं, कई हेमन बाई जैसे। हेमन ट्रेन में फल बेचती थी, अब ट्रेन रुकती नहीं, रोजी खत्म हो गई।
अब तो गाड़ी बंद होते एको पैसा कमाई नहीं होते, 200 किराया बस एक होते तो 250 काम करा था, 200 बस वाला देते 50 में निकल जी आवा था, वो नहीं हुआ थे 50 में।
बिलहा के नानक रेलवानी धान और दाल मिल चलाते हैं। 30 लोगों का स्टाफ था, ट्रेन बंद है, कारोबार मंदा, 15 लोगों से काम चला रहे हैं क्योंकि श्रमिकों को कारखाने तक लाने का खर्च भी नहीं निकल रहा।
तो लेबर बोलते हैं हमको गाड़ी भेजो, ट्रेन भेजो। अब एक गाड़ी भेजते हैं तो हमको 2000 रुपए लगता है, जिसमें 4 लेबर आते हैं, जबकि वो 10 रुपए प्रतिदिन उनको लगता था, तो अब वो काम 300 में हो जाता था, अभी 2000 में होता है। हमने क्या किया भाई, लेबर को कौन रोज लाएगा पहुंचाएगा, आर्थिक ज्यादा मार पड़ रही थी, हमने लेबर आधे कर दिए, 30 थे उनको 15 कर दिए।
छत्तीसगढ़ में ट्रेन स्टॉपेज बंद होने का विरोध शुरू हो गया है। रेलवे जोन संघर्ष समिति का कहना है कि पूरे देश से 6800 स्टॉपेज खत्म हुए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के 200 स्टॉपेज हैं।
हमारे द्वारा रेल रोको आंदोलन किया गया, रेलवे प्रशासन ने हमारे ऊपर बल प्रयोग किया और जिसमें कम से कम 3000 व्यक्तियों की उपस्थिति थी, परंतु मात्र 8 लोगों के ऊपर हमारे ऊपर FIR दर्ज की गई और 1,08,000 रुपए का हमारे ऊपर जुर्माना ठोका गया है।
आने के लिए साधन नहीं है, आम आदमी नहीं आ पा रहा है, बीमार व्यक्ति नहीं पहुंच पा रहा है, लेबर नहीं पहुंच पा रहा है, दूध सब्जी फल व्यापार सब कुछ चौपट हो गया है। स्थिति इतनी खराब है कि पढ़ने के लिए विद्यार्थी नहीं आ पा रहे हैं।
उधर रेलवे का साफ कहना है, टिकटों की बिक्री नहीं तो ट्रेन नहीं। कोयले के लिए गाड़ी रद्द करने को भी वो जायज ठहरा रहे हैं।
पर टिकट अधिक नहीं सेल हो रहे थे या जहां पर जितनी टिकट सेल होनी चाहिए थी उतने फुटफॉल नहीं थे, टिकट नहीं सेल हो रहे थे इस कारण, और यात्रियों की संख्या भी वहां कम थी, इस वजह से वहां ट्रेनों का स्टॉपेज बंद हुआ।
कम यात्रियों का हवाला देखकर रेलवे बोर्ड ने छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों के 200 से ज्यादा स्टॉपेज को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से स्थानीय छात्रों को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी है। वहीं व्यापार कम होने की वजह से स्थानीय लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। रायपुर से जुल्फिकार अली, NDTV इंडिया के लिए।
बेरोजगारी से संबंधित एक पॉजिटिव न्यूज है, ऑस्ट्रेलिया भी उसी ग्लोब का हिस्सा है जो इन दिनों ग्लोबल संकट से जूझ रहा है। लेकिन वहां बेरोजगारी 50 साल में सबसे कम हो गई। ऑस्ट्रेलिया के कई अखबारों में यह खबर छपी है कि बेरोजगारी की दर में ऐतिहासिक गिरावट आई है। ऑस्ट्रेलिया के ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के अनुसार पिछले महीने बेरोजगारी की दर 3.9% हो गई। 1974 में बेरोजगारी की दर 2.74% थी, उसके बाद 3.9% का नंबर आता है। यह भी देखा जा रहा है कि पिछले महीने पक्की नौकरी की संख्या बढ़ी है और कच्ची नौकरी की संख्या में भारी गिरावट आई है, यह बड़ा बदलाव आया है। भारत में अच्छी बात यह है कि यहां के युवाओं को इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। अगर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लोगों की सक्रियता को देखें तो भारत में कोई भी बेरोजगार नहीं मिलेगा। यह मजाक है, लेकिन केवल मजाक नहीं। हिंदी प्रदेशों में कश्मीर को लेकर जिस तरह की धारणाएं हैं, उसे दूर करने का प्रयास किसी भी विपक्षी दल ने कभी नहीं किया। ऐसा करने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ती, पढ़ना पड़ता, कश्मीर के सवालों को समझना पड़ता और हिंदी प्रदेशों के मन में जो सवाल हैं, उसे भी समझना पड़ता और जवाब देना पड़ता, तभी जाकर आप लोगों से संवाद कर पाते। क्या आप किसी एक विपक्षी नेता को जानते हैं हाल फिलहाल पिछले 7-8 वर्षों में जो कश्मीर को लेकर हिंदी प्रदेशों की जनता के सवालों का जवाब दे सके, उनसे बात कर सके? क्या आपने कभी हिंदी प्रदेश के विपक्षी दलों के नेताओं को कश्मीर पर विस्तार से बोलते सुना है? लोगों के मन में जो भ्रम बिठाया गया है उस पर बोलते सुना है? इसका नतीजा यह निकला है कि हिंदी प्रदेशों में कश्मीर को लेकर एक तरफा और मनमाना किस्सा फैल गया है। नजीर मसूदी की यह रिपोर्ट उस कश्मीर से परिचय कराती है जो एक साथ राहुल भट्ट अमर रहे का नारा लगाती है और रियाज अहमद अमर रहे का भी।
बड़गाम जिले में एक मजिस्ट्रेट कार्यालय के अंदर राहुल भट्ट की हत्या के बाद से कश्मीरी पंडित प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी के बाहर सुरक्षित स्थानों पर ट्रांसफर किया जाए और वहीं बसाया जाए। 36 साल के राहुल भट्ट तहसील कार्यालय में क्लर्क थे। आतंकवादियों ने काम करने की मेज पर ही राहुल को गोली मार दी, जिससे घाटी में रहने वाले 4000 से अधिक कश्मीरी पंडित सदमे में हैं। ये वो कश्मीरी पंडित हैं जो प्रवासी पंडितों के लिए प्रधानमंत्री विशेष रोजगार पैकेज के हिस्से के रूप में घाटी लौट कर आए हैं। राहुल भट्ट की हत्या के बाद कश्मीरी पंडित अब एक ही सवाल पूछ रहे हैं। जब एक कश्मीरी पंडित मजिस्ट्रेट कार्यालय के अंदर सुरक्षित नहीं है तो वो घाटी में कहां सुरक्षित रह पाएगा?
12 को हमारे भाई राहुल बच्चे की किलिंग कर दी गई थी, जो एक टारगेट किलिंग थी और वो भी तहसील ऑफिस में, जो ऑफिस थोड़ा सा सिक्योर माना जाता है, जहाँ एसडीएम भी बैठते हैं, वहाँ गार्ड्स भी होंगे ऑब्वियसली। तो जब एक सेफ एंड सिक्योर ऑफिस में किसी की टारगेट किलिंग होती है, उनकी चेयर पे जाके उनको मार दिया जाता है, तो हम जैसे एम्प्लॉइज तो सेफ नहीं है। तो इसलिए हमारी डिमांड्स बहुत सिंपल, 2-3 डिमांड्स है, क्योंकि हम सेफ फील नहीं कर रहे हैं। जॉब तो कर रहे हैं पर जीने का हक हमको शायद नहीं मिल रहा है।
पुलिस और प्रशासन विरोध कर रहे कश्मीरी पंडितों को ये समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो आतंकवादियों से न डरें और घाटी न छोड़ें, क्योंकि पाकिस्तान और आतंकवादी ठीक यही हासिल करना चाहते हैं। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार पंडितों से कह रहे हैं कि अगले एक साल के अंदर आतंकवाद समाप्त हो जाएगा और वो हथियार प्रशिक्षण और कश्मीरी पंडितों को हथियार देने के लिए भी तैयार हैं। आईजीपी ने आतंकवादी हमलों का सामना करने वाले स्थानीय मुसलमानों का भी उदाहरण दिया और कहा कि जान की मत सोचिए, देश की सोचिए।
डरने की बात नहीं है, हम लोगों को अपने देश का नाम ऊंचा करना है, देश को नीचे नहीं झुकाना है। आप लोग समझिए कि आप भी अपने जान का मत देखिए, अपने देश के लिए सोचिए, देश सोचता है। आप डर जाएंगे तो पाकिस्तान तो वही चाहता है, आतंकवादी वही चाहता है कि ऐसा माहौल करे, उसको झुकाना है और झुक रहा है। जब दीपक बुझने लगता है तो बहुत तेजी में चलता है। ये आतंकवाद जो हुई है मैं बता रहा हूँ, एक साल के अंदर में साफ हो जाएगा, आप देख लीजिएगा पूरा। क्या मैं यहाँ नहीं जाऊँ? नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, इतना हौसला रखिए, इतना इसका दम नहीं कि इतना इतना कर देगा। मुझे तकलीफ है, हमारे जो भाई को खोया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये भी सोचना पड़ेगा। देखिए आपको सोचना पड़ेगा कि लास्ट ईयर कराल में हमारे एक पुलिस वाले फयाज साहब थे, उनको मार दिया, उसकी वाइफ को मार दिया, उसकी बेटी को मार दिया और दो साल के बच्चा को किक करके फेंक दिया। उस वकील जेसवाल ने तो हम लोग वही प्रोमिस किए थे मारेंगे, 10 दिन अंदर में उसको न्यूट्रलाइज किए पाकिस्तानी को, जेसवाल को। अभी आपके देखिए बड़गांव में एक एसपीओ को मार दिया, उसको भाई को मार दिया। डरना नहीं है, अगर ये इंसिडेंट बीच में होता है तकलीफ होता हम लोग को, लेकिन हम लोग उनको जवाब, ये तो लड़ाई है, ये जिनकी लड़ाई है। अगर आप डर जाएंगे तो वही नहीं चाहता, उसका एजेंडा ही है।
ये सही है कि आतंकवादियों के निशाने पर मुस्लिम कश्मीरी भी हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों का कहना है कि दोनों मुद्दों को मिलाना ठीक नहीं। सरकार कश्मीरी पंडितों को आतंकवाद से लड़ने के नाम पर बलि का बकरा न बनाए, यही कश्मीरी पंडितों का नारा भी है।
बलि का बकरा नहीं बनेगा, बलि का बकरा नहीं बनेगा,
नहीं बनेगा, नहीं बनेगा।
वही वोट
जस्टिस,
वही वोट
जस्टिस,
वही वोट
जस्टिस।
सरकार जो है, स्टेट जो है, वो इन दो चीजों को मिक्सअप ना करे। दोनों एक अलग अलग चीजें हैं, वो एक नेशनल पॉलिसी है, इंटरनेशनल इशू है, नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ा है, और हमारा एक इशू अलग है। वी आर ह्यूमन बींग्स, राइट टू लिव हमारी विद डिग्निटी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें ग्रांट करता है राइट टू लिव विद डिग्निटी। तो वो प्लीज ये दोनों चीजें मिक्सअप ना किया जाए और हमारे जो इश्यूज है वो जल्द से जल्द सॉल्व किए।
तो मतलब ये जो आप कहते हैं, ये क्या वाजिब है कि जो आप कहते हैं कि आपको यहाँ से रिलोकेट किया जाना? वो वही कहते हैं अगर आप यहाँ से आए तो आतंक की उनकी कामयाबी होगी या पाकिस्तान की कामयाबी।
देखिए सर, वो कहते हैं तो, लेकिन वो नहीं हमारे, हम उसको मानने को तैयार नहीं। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उस चीज और इस चीज को वो इकट्ठा ना करें।
पिछले साल अक्टूबर से जब कश्मीरी पंडितों या माइग्रेंट वर्कर्स पे हमले हुए, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा का बयान सामने आया कि वो इंतकाम लेंगे उनसे जिन्होंने हमले किए। कुछ दिनों बाद पुलिस कहती है कि जिन लोगों ने कत्ल किए उनको इनकाउंटर में मार दिया गया है, लेकिन ये हमले रुकते नहीं हैं। क्या इंतकाम अमल ला सकता है? क्या सिर्फ मिलिटेंट मारना हमले बंद कर सकता है? एक मुश्किल मसला है, इससे कैसे निकलेंगे ताकि यह कश्मीरी पंडित जो इस जगह के रहने वाले हैं, ये अपनी ही धरती पे क्यों डर के रहे, खौफ क्यों रहे? एक टीचर ने मुझे ये बताया कि जब वो अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाता है तो उसकी नजर दरवाजे पे होती है कि कोई वहां पिस्टल लेके ना आए, उस पे गोली मारे। क्या वो बच्चों को पढ़ाएगा या अपनी जिंदगी के लिए?
राहुल भट्ट की हत्या के बाद से कश्मीरी पंडित बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, भाजपा और केंद्र सरकार के पुतले फूंक रहे हैं। वो कश्मीरी पंडितों की दयनीय हालत के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं। प्रदर्शनकारियों में शामिल शिवानी कहती हैं कि कश्मीरी लोग अच्छे हैं, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो शांति का माहौल ही बनने नहीं देते।
हम जीना चाहते हैं एंड हम नहीं कहते यहाँ के लोग बुरे हैं, हम यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, दे कोऑपरेट अस वेरी वेल, बट द प्रॉब्लम इज शायद कोई ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो शायद ये नहीं चाहते कि यहाँ एक पीसफुल एनवायरनमेंट रहे, हमेशा के लिए क्रिएट रहे। तो हम बस यही चाहते हैं कि एटलीस्ट हम जी सकें अच्छे से।
सरकार कहती कि नहीं, आप बाहर मत जाओ, यहीं रहो, वरना आतंकियों की कामयाबी होगी।
गवर्नमेंट तो बहुत सारे प्लान्स बनाती है एंड वो नेशनल लेवल पे अपना एक इमेज क्रिएट करना चाहते हैं कि ठीक है यहाँ सब ठीक है ये है वो, बट मेन जो कल जो मतलब जो सफर कर रहा है वो तो हम ही लोग हैं ना। इसलिए सर हम डिमांड कर रहे हैं कि एटलीस्ट हमें रिलोकेट कर दिया जाए सो दैट वी कैन लिव पीसफुली।
17 साल तक घाटी में एक भी घटना ऐसी नहीं हुई जिसमें कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया हो, एक भी घटना ऐसी नहीं हुई जिसमें प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया हो। कई लोग कहते हैं कि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद चीजें बदल गई हैं। पहला निशाना प्रवासी मजदूर बने, पिछले 2.5 साल में आतंकवादियों ने दूसरे राज्यों से कश्मीर में मजदूरी करने आए 18 लोगों को मारा है, इनमें से 10 मुसलमान और 8 हिंदू हैं। पिछले साल अक्टूबर में जब 70 साल के माखनलाल बिंद्रू की हत्या हुई तब सभी के कान खड़े हो गए थे। घाटी के लोग समझ गए थे कि आतंकवादी अब क्या चाहते हैं, इसलिए इसके विरोध में घाटी में पंडित और मुसलमान दोनों एक साथ आए, शोक व्यक्त किया और हत्या की निंदा की। बिंद्रू परिवार के साथ खड़े हो गए और कहा कि आतंकवादियों ने बिंद्रू के बहाने कश्मीरियत पर हमला किया है, क्योंकि हिंसा और आतंकवाद का खमियाजा सभी को भुगतना पड़ता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो या कोई और। राहुल की हत्या के बाद जब पंडितों ने शेखपुरा में विरोध प्रदर्शन शुरू किया तो उनके मुस्लिम पड़ोसी ही उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। यूपी बिहार के नौजवान संजय सफाई को आप सुन सकते हैं। संजय कह रहे हैं कि शेखपुरा के मुसलमान कैसे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कभी भी इस कश्मीर को हिंदी प्रदेश में प्रचारित नहीं करेगी।
We are highly thankful and we are really privileged that
हम सौभाग्यशाली हैं कि हम शेखपुरा इलाके में रहते हैं। जिस समय से हमने राहुल की हत्या की खबर मिलने के बाद से विरोध शुरू किया, हमारे बहुसंख्यक समुदाय शेखपुरा के मुस्लिम भाई हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। वे पीने की पानी की आपूर्ति भी करते हैं। उन्होंने सुनिश्चित किया कि यह पूरे समुदाय के लिए सुबह है। हम वास्तव में उनके लिए आभार महसूस करते हैं।
थैंकफुल टू देम एंड दिस अप्रिशिएट। मेरा इतना ही कहना है।
संदीप कॉल 2011 से घाटी में काम कर रहे हैं, जब उन्हें प्रधानमंत्री पैकेज के तहत सरकारी नौकरी दी गई थी। उनका कहना है कि उन्हें कभी किसी स्थानीय मुस्लिम से कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन हाल के हमलों ने उन्हें इतना परेशान कर दिया कि वो यहाँ अब काम करना नहीं चाहते। जबकि जावेद संदीप को दिलासा दे रहे हैं कि हम कश्मीरी पंडितों के साथ हैं।
मेरा इतना ही कहना है, गवर्नमेंट आज तक ना कोई सपोर्ट कर पाई, ना कोई हमारी सेफ्टी के लिए, ना कुछ। हमने काम करा, ये मुस्लिम कम्युनिटी हमारे साथ है, हमारे मॉर्निंग में साथ है, हमारी खुशियों में साथ है, हम इनके साथ रह रहे, ये हमारे साथ रहे। मुझे यही कहना है कि गवर्नमेंट का आखिर प्लान क्या है, गवर्नमेंट आखिर चाहती क्या है। कल राहुल जी को वो ऑफिस में, मजिस्ट्रेट के ऑफिस में नहीं बचा पाए।
हम कश्मीरी पंडित के साथ
रहेंगे। माना जा रहा है कि आतंकवादी इसलिए कश्मीरी पंडितों को निशाना बना रहे हैं क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने अधिवास और भूमि कानूनों में बदलाव किया है। संकट में बेची गई कश्मीरी पंडितों की संपत्तियों को बहाल करने जैसे आदेश दिए हैं। ऐसे में संदेह और अविश्वास के माहौल ने हिंसा के इस दुष्चक्र को जन्म दिया है। एक तरफ कश्मीरी पंडित असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उधर सरकार मजबूती से यकीन दिला रही है कि आतंकवाद पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति बदतर होती दिख रही है। अब आतंकवाद जम्मू में पैर पसार रहा है, जो पूरी तरह से एक शांतिपूर्ण क्षेत्र था। जून 2020 से अब तक 5 कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा चुका है और 4 अन्य घायल हुए हैं। इसी अवधि के दौरान कहीं ज्यादा मुसलमान भी मारे गए। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में उतरे कश्मीरी पंडित केवल राहुल भट्ट को याद नहीं करते, रियाज अहमद को भी याद करते हैं, जिनकी पिछले गुरुवार को राहुल की हत्या के कुछ घंटे बाद पुलवामा में उनके ही घर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
राहुल भट्ट अमर रहे, राहुल भट्ट
अमर रहे,
दीपक चंद
अमर रहे,
दीपक चंद
अमर रहे,
सतिंदर कौर
अमर रहे,
सतिंदर कौर
अमर रहे,
रियाज अहमद
अमर रहे,
रियाज अहमद
अमर रहे।
कश्मीर घाटी में राहुल और रियाज के अमर होने के नारे लग रहे हैं। क्या उत्तर भारत के लोग कभी कश्मीर की इस आवाज और उस आवाज में उनकी सिसकियों को सुन सकेंगे, या वही कहेंगे जो उन्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बताया जाएगा?
जीने दो, जीने दो,
जीने दो।
श्रीनगर से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।
जीने दो, जीने दो,
कश्मीरियों को जीने दो।
क्या आप दर्शकों के बीच ऐसी खबरों के लिए कोई जगह बची है, या आपका सारा समय मंदिर को लेकर झगड़ने में बीत रहा है? इस सवाल को थोड़ा और ठीक कर देता हूं, और यह सवाल केवल आपसे नहीं है, आप तो अच्छे दर्शक हैं, फिर भी आपके जरिए दर्शक समाज से यह सवाल करना चाहता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप महंगाई के लिए पार्ट टाइम दर्शक हैं और मंदिर के लिए फुल टाइम दर्शक हैं? इन दोनों में आप क्या हैं? मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी आप ही बताएं कि आप क्या हैं। ब्रेक ले लेते हैं।
पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने रोड रेज के 34 साल पुराने मामले में साल भर सश्रम जेल की सजा सुनाई है। 1988 में नवजोत सिद्धू ने पार्किंग के एक झगड़े में अपने दोस्त के साथ 64 साल के एक बुजुर्ग गुरनाम सिंह की पिटाई की थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। 1999 में निचली अदालत ने सिद्धू को बरी कर दिया, लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 2006 में उन्हें 3 साल की सजा सुनाई। सिद्धू ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लापरवाही से मौत का दोषी मानते हुए 2018 में बस 1,000 रुपए जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था, लेकिन समीक्षा याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदला और 1 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे की रिपोर्ट गुरुवार सुबह आधिकारिक तौर पर वाराणसी की कोर्ट में दाखिल कर दी गई। रिपोर्ट मुख्य कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने दाखिल की। हालांकि इस सर्वे रिपोर्ट का ब्यौरा भी दाखिल होने के बाद लीक हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद के भीतर खंभों के तौर पर और दीवारों पर कई हिंदू प्रतीक उकेरे हुए मिले हैं। इनमें एक गोलाकार आकृति भी मिली है जो हिंदू पक्ष के मुताबिक शिवलिंग है, जबकि मस्जिद का पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की वाराणसी कोर्ट में सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई होगी। खाना पकाना अब और महंगा हो गया है। गैर सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपए की सीमा पार कर गई है। गुरुवार को तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में इस साल तीसरी बार बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। इस बार 3.5 रुपए दाम बढ़ाए गए। 7 मई को ही कीमत 50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाई गई थी। पिछले एक साल में घरेलू रसोई गैस की कीमत 7 बार बढ़ाई जा चुकी है।
आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।